نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. شکر گزاری کے فوائد. تو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے نعمتوں کی اقسام. پیج 97 پہ یہ ٹاپک شروع ہوا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس تین قسم کی نعمتیں ہیں. کوئی بتائے گا پہلی قسم کی نعمت کون سی ہے؟ عام نعمتیں ہیں. یہ کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟ سب کو ملی ہوئی ہیں. اور بعض دفعہ یہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نعمت سمجھتے بھی کوئی نہیں. ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں جی, یہ ملنی تھی. اب اللہ نے پیدا کیا تو اس نے ہمیں کھلانا نہیں اور اس نے پلانا نہیں. بعض سسٹرز اپنے شوہروں کے بارے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں, تو کمانا نہیں انہوں نے, کھانا نہیں. یعنی یہ وہ عام نعمتیں مومن کو بھی ملتی ہیں, کافر کو بھی ملتی ہیں, فاجر کو بھی ملتی ہیں, سب کو ملتی ہیں یہ نعمتیں. اور ایسی نعمتوں کو پا کر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہم سے چھین لی تو ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھیے کہ دیکھنے میں یہ عام نعمتیں ہیں لیکن ان کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے. ایک دن سورج نہ نکلے, ایک دن چاند نہ آئے اور ایک دن دھوپ نہ آئے تو ہمارا دیکھیے کیا حال اور حشر ہو جائے گا. پہاڑ نہ ہو تو ہماری زمین ہلنے لگے, اگر یہ زمین بالکل سیدھی نہ ہو تو ہم کبھی بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو آج اس چیز پہ اگر آپ اور میں غور کر کے دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا. آج جو ٹاپک شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ جزوی عام نعمتیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی اس سے فرق ہیں. آئیے پڑھتے ہیں پھر اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمتوں میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ جزوی عام نعمتیں. یعنی یہ وہ نعمتیں کہ جو عام نہیں ہیں لیکن عام نعمتوں سے مشابہت رکھتی ہیں. ان کا نزول بعض لوگوں پر ہوتا ہے, یعنی ایسی نعمتیں بعض لوگوں کو ملتی ہیں اور بعض کو نہیں ملتی. بعض ملکوں میں ہوتی ہیں اور بعض ان سے محروم ہوتے ہیں. مثلا ہدایت کی نعمت. اب دیکھیے آکسیجن کی نعمت اللہ نے سب کو دی ہے, جو دنیا میں آیا اس کو آکسیجن مل رہی ہے. لیکن ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو چن لیتے ہیں. کن کو چنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بس ہے مسلمان, اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت جیسی نعمت کے لیے چن لیا. حالانکہ ایسے کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تجھے دین حق کی طرف ہدایت دی اور اس ذات نے بغیر کسی کوشش کے تیرا سینہ اس ہدایت کے لیے کھول دیا. تجھے نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ آزمائش. اللہ نے تجھے دین مستقیم کا راستہ دکھایا ہے اور کئی لوگوں کو اس نے اس نعمت کی توفیق نہیں دی تاکہ تجھے اس نعمت کی قدر و منزلت معلوم ہو. ذرا سوچو تو صحیح کہ محشر کا دن ہے اور تم بھی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو. لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا ہے اور دوزخ کی آگ پورے جوش سے آواز نکال رہی ہے. وہ ان نافرمانوں اور کافروں کے سامنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہی ہے جو اس کی شدت گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر تم سنو کہ یہ نافرمان اس کے اندر سے بول رہے ہیں اور چیخو پکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. سورۃ مومنون آیت 107 میں یہ بات آتی ہے, ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے پروردگار, ہم کو اسے نجات دے, اگر ہم اب بھی ایسا ہی کریں بے شک ہم ظالم ہوں گے. اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً جب تم کہہ رہے ہوگے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سورۃ الاعراف آیت 43-43. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا اور کبھی ہماری یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا. یہ آپ کو جملہ کب بولا جائے گا؟ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو پہلا جملہ, پہلا کلام, پہلی دعا ان کی زبان پہ ہوگی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. کیا اس وقت آپ کو مجھے یہاں بیٹھنا ایک نعمت لگ رہا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی طرف ایک راستہ ہے؟ کیا ہم حقیقت میں اس کی طرف آ کر اپنے آپ کو ہدایت کے طرف بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ہمیشہ جب بھی علم کی محفل میں بیٹھیں یہی دعا کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہمیں راستہ ہی نہ ملتا, ہماری گاڑی نہ چلتی, موٹر سائیکل نہ ہوتی, رکشہ نہ ملتا. آ جاتے تو راستہ بھول جاتے, آ جاتے تو بیماری کی وجہ سے سن نہ سکتے, بچے کی وجہ سے سن نہ سکتے. کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ شوق رکھتے ہیں لیکن وہ سننے کی کوشش کے باوجود نہیں سن پاتے. تو اس وقت دل کی گہرائی سے سب کہیں الحمدللہ. حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو اور جسمانی طور پر بالکل تندرست ہو تو اس کی دنیاوی نعمتیں اور اخروی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کی سردار جسمانی تندرستی ہے اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس کو ذرا۔ نمبر ایک، مسلمان ہیں ہم؟ کہیے الحمدللہ۔ دوسری بات، جسمانی طور پہ تندرست ہیں؟ الحمدللہ۔ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں اس کا کوئی غم نہ کیا کریں، اس کا نہ تو تذکرہ کیا کریں، نہ رونا روئیں، نہ لوگوں کو سنائیں، بس اس پہ ایک ہی لفظ بولیں، الحمدللہ۔ اس سے بڑی تکلیف تو نہیں ہے نا۔ پھر آپ دیکھیے، دنیاوی اور اخروی سب نعمتیں مل گئیں، کیا پتہ چلا؟ اسلام اور صحت، یہ دو نعمتیں مل جائیں سب کچھ مل گیا، کیونکہ دنیاوی نعمتوں کی سردار جسمانی تندرستی ہے اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام ہے۔ یہ جملہ یاد کرنے والا ہے، دنیا کی نعمتوں کی سردار جسمانی صحت ہے۔ کیوں بھلا؟ آپ دیکھیے، ذرا سی سر میں درد لگ جائے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ شادی والے گھر میں بیٹھے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے سے تیاریاں کر رہے تھے، دانت میں درد نکل آیا، کیا آپ اس شادی کو انجوائے کریں گے؟ آپ کے سامنے من پسند کھانا پڑا ہوا ہے لیکن آپ بخار سے پھک رہے ہیں، دل چاہے گا؟ آزما کے دیکھیں، ہمیں اپنے رشتے بھی تبھی پیارے لگتے ہیں جب ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ ماں کو بچے سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ماں بیمار ہو تو اس بچے کو دیکھ نہیں پاتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں صحت مند کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دو نعمتوں کی عموماً لوگ قدر نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک نعمت وقت ہے اور ایک صحت ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے اس چیز کو معیار بنا لیجئے کہ اے مالک، ہمیں تو اپنی صحت کی قدر کی توفیق دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنی صحت بھری زندگی صرف رونق میلوں میں، مشغلوں میں، ٹی وی دیکھ کر، بیکاریات میں، فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے ضائع کر رہے ہیں۔ وہ دنیا سے کیوں آئے اور دنیا میں انہوں نے آ کر کیا کما لیا؟ اگر ایک انسان اپنے اوپر لے کر سوچے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس دنیا میں آنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے بن مانگی مل چکی ہیں۔ تو سب بولیے اس وقت اپنی ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے، الحمدللہ صحت ہے، مت روئیں، مت غصہ کریں، مت پریشان ہو، مت لوگوں کو سنائیں۔ کوئی بندہ آپ کی بیماری دور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی دور نہیں کر سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ دوا بھی اللہ سے پہلے اجازت طلب کرتی ہے کہ میں اس بندے کو صحت دوں کہ نہ دوں۔ کئی دفعہ وہی دوا لڑ جاتی ہے، آج کہتے ہیں اس کو ریئیکشن ہو گیا، الرجی ہو گئی۔ ایک بندہ دوا کھاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے وہ اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے آپ کو اپنی زندگی میں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، جو وقت ہے اس کو اچھا گزار لیں۔ دیکھیے، آنے والا ہر دن پہلے سے کمزوریوں کا ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ تو پھر جملہ دہرائیں، دنیاوی نعمتوں کی سردار تندرستی اور اخروی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، شکر ادا کرنے کے لیے اس بات سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، یعنی اس بات سے اچھی اور بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آدمی کہے۔ اب آپ بھی کہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی سے اچھی باتیں کریں، تو کیا بات ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر انعامات کیے اور ہماری اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ امیجن تو کیجئے، سب کچھ ہوتا، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، کپڑے، جوتے، زیور، بچے، شوہر، گھر، اسلام نہ ہوتا، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، کسی دنیاوی چنگل میں پھنسے ہوتے۔ اللہ نے اسلام دے کر ہماری ساری نعمتوں کو خوبصورت کر دیا۔ جزوی عام نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا جہاں امن و امان کا دور دورہ ہے، اور ہمارے ارد گرد ممالک میں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمینی خزانوں کے دھانے کھول دیے، اس زمین نے زرد، سرخ اور کالا سونا نکالا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کالے سونے، کالا سونا کس کو کہتے ہیں؟ پٹرول کو، کیونکہ جن ملکوں کے پاس پٹرول ہے آپ دیکھیے آج وہ دولت مندوں میں شمار ہوتے ہیں، اس کالے سونے یعنی پٹرول کو گاڑیوں کا ایندھن بنا دیا جس سے عوام کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ اس کی طاقت سے زمینی، فضائی اور بحری مواصلات کا نظام چل رہا ہے۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس ایندھن سے پٹرولیم کی مصنوعات بنتی ہیں جس سے کپڑے، گھر، برتن، دیگر ایسے ایسے آلات بنتے ہیں کہ انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ अगर अल्लाह इस तरफ इंसानों की रहनुमाई ना करता तो ये नेमतें इनको कहाँ से हासिल होती। बस पाक है वो बड़े फजल और एहसान वाला। इन नेमतों में से ये भी है कि हमारे इन मुस्लिम ममालिक में दूर दराज से लोगों की आमदोरफ़्त शुरू हो गई और उन्होंने यहाँ के दुनियावी और उखरवी मुनाफे का ख़ुद मुशाहदा किया। बस यहाँ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के बनी नौ इंसान को जमा कर दिया जिनके जमा होने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इन नेमतों में से हमारी सवारियाँ और बेहतरीन घर हैं जिनके बारे में माजी में हम सोच भी नहीं सकते थे। बस कलाम पाक की तिलावत कीजिए ताकि आपको अल्लाह के एहसानात और इनामात का अंदाज़ा हो जो इसने आप पर किए हैं। इन नेमतों पर खूब बढ़ चढ़ कर शुक्र अदा कीजिए। तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया। सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इसकी हिदायत दी। हम तो इसकी हिदायत पाने वाले ही नहीं थे अगर वो हमें हिदायत ना देता। लौलान हदान अल्लाह। ठीक है, तो ख़ुलासा क्या निकला? पहली आम नेमतें थी, सबको मिलती हैं, मोमिन काफिर फाजिर नेक बात सबको। दूसरी वो नेमतें जो जुज़वी आम नेमतें हैं, सबको नहीं मिलती, और उसमें दो बड़ी चीज़ें तंदरुस्ती और ईमान। दुनियावी नेमतों की सरदार तंदरुस्ती और उखरवी नेमतों की सरदार हिदायत और कामयाबी है। ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को अल्लाह के हुक्म से अपनी नेमतों की तरफ माइल करती हैं। अब तीसरी किस्म है ख़ास नेमतों की। इनका ताल्लुक इंसान की ज़ात से है। इंसानी जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला ने किस तरतीब व तंजीम से बना दिया है जिसमें से एक इंसान की अक़ल भी है, जिसके बग़ैर ज़िंदगी में सोच विचार करने की हिस ख़त्म हो जाती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र किया है। सूरत ज़ारियात 20 और 21। वफ़िल अर्दि आयातुल मुक़िनीन वफ़ी अन्फुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। और यकीन वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी, तो क्या तुम देखते नहीं हो? सनुरीहिम आयातिन फ़िल आफ़ाक़ी वफ़ी अन्फुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सूरत हामीम सजदा आयत 53। अन करीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक आलम में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनके अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि हक यही है। क्या पता चला? अब ये जो आपके मेरे अपने वजूद में निशानियाँ, ये कौन सी हैं? ज़मीन में निशानियाँ, हमारे वजूद में। आप देखिए कि हम सब की ज़िंदगी में दिन रात तब्दीलियाँ हो रही हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है। कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी टूटता हुआ घर जुड़ जाता है, कभी बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर्स कहते हैं बच्चे नहीं होंगे, अचानक अल्लाह बुढ़ापे में औलाद दे देता है, कभी एक शख्स सेहतमंद होते एकदम खड़े खड़े हार्ट फेल हुआ चला गया। ये निशानी है। जो आयत अनफुस है ना, वो हमारे ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। तो लिहाजा एक ईमान वाला हमेशा अपने हालात के ऊपर गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, किसी और के साथ ये क्यों नहीं हो गया। और आप देखेंगे कि ज़रा सा आप अपने आप के करीब होकर तो महसूस करें, पहले आपको अपना जिस्म अपने आप में नज़र आएगा। इसमें आपकी सोच और विचार की ताकत और रूह भी है जिनको आप नहीं देख सकते। नफ्स की खूबियों में दर्जा ज़ैल काबिले ज़िक्र है, यानी कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं कि जिनकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता। अब ये हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि मख्फी नेमतें जिनकी तरफ ख्याल भी नहीं जाता। 107 अगर आप देखें कि छुपी हुई हैं लेकिन हम सोचते नहीं। मसलन क्या, अब इसको काउंट कीजिएगा और हर एक को आपने इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है। सबसे पहले है बेहतरीन पैदाइश। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत तरीन अंदाज में बनाया, आपको कामिल तरीन अक़ल अता की और ऐसी बलीग ज़ुबान अता की जो हर वो चीज़ बयान कर सकती है जिसे आपकी आँख ने ना देखा हो, ना आपके कानों ने सुना हो, या जो भी आपके दिल में ख्याल गुजरा हो और जो कुछ आपने सोचा हो। इस ज़ुबान में ना तो कोई ज़ाहरी रग है, ना कोई ताकत और असाब है, बस ये तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेहतरीन कारीगरी का एक शाहकार है। रब्बे हकीमो करीम ने फरमाया सूरत अल इन्फितार आयत 6 और 7, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक। ए इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम से किस चीज़ ने बहकाया, जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर दुरुस्त बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, और फरमाया, सूरत नहल आयत 78, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया वजअल लकुम अस-समअ वल अबसार वल अफईदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह तआला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला, इस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, शायद कि तुम शुक्र करो। इमेजिन करें, कभी हमने सोचा कैसे माँ के पेट से अल्लाह बच्चे को निकालता है, उस वक़्त सुनता है बोलता नहीं है, जो सुनता है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिखा सकता, करवट नहीं पलट सकता, हाथ हिला लेता है, और बाद में कैसे वो भागता दौड़ता बच्चा बन जाता है, कैसे इंसान दुनिया में फिर अपनी भाग दौड़ कर रहा होता है। फिर इसी तरह सूरत बलद आयत 8-10, अलम नजल लहु ऐनैन, क्या हमने इनकी दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानम व शफतैन, और क्या हमने इनको जुबान और दो होंठ नहीं दिए, वहदैनाहुन नजदैन, फिर हमने इनको दोनों रास्ते दिखा दिए। और इंसानी जिस्म में हाथों की पैदाइश का क्या ही उम्दा अंदाज है, इसमें बड़ी हिकमत से उंगलियों को तरतीब दिया गया, कोई छोटी और कोई बड़ी है, और इनके ऐसे जोड़ हैं जो पकड़ने में मदद देते हैं, और क्या ही नाखून हैं कि पोरों की भरपूर हिफाजत करते हैं, और इनसे बाज़ ज़रूरियात पूरी होती हैं, बस पाक है वो पैदा करने वाला और सूरत बनाने वाला। इस जिस्म के अंदर सर है जो कितना ही बेहतरीन अंदाज में पैदा किया गया है। आप ज़रा अपने सर के बारे में सोचें, ये जो ऊपर बालों का एक छज्जा है ना, ये पैकिंग मटेरियल है ताकि सर को चोट ना लगे, अगर कहीं सर टकराए तो बाल उसको बचा लें, यानी ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। जैसे आपके बहुत कीमती बर्तन पैक करें तो उसके बाहर फिर फोम की शीट लगा देते हैं, अल्लाह ने आपके मेरे लिए इसको ऐसे रखा। इससे क्या होता है इन बालों से, इससे दिमाग की हिफाजत होती है, और दिमाग तो फिर बहुत ही अहम चीज़ है, इसलिए दिमाग को कितनी हिफाजत और बुलंद मुकाम पर रखा गया, और हवास तकरीबन सब ही सर के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर सर को कुछ हो जाए तो सारे जिस्म ही में तातुल रूनमा हो जाता है। देखो तो सही, इसको अल्लाह ने कंधों से बुलंद रखा है ताकि हर तरफ हरकत कर सके, अगर जिस्म के अंदर धंसा होता तो इसका हरकत करना मुश्किल होता। फिर इस सर को कितने ही प्यारे बालों के कपड़े पहनाए, इससे इंसान खूबसूरत लगता है। फिर सर की जिल्द की ये बाल हिफाजत करते हैं, और इसके ऊपर कितनी मोटी और मज़बूत जिल्द होती है। फिर ये मज़बूत और सख्त हड्डी के पर्दे के अंदर नरम साइल मादा जो हरकत के वक्त नरमी के साथ जिधर चाहे मुड़ जाता है। फिर इसके नीचे और भी तहें हैं जो अजीब किस्म के आसाब और खून की रगों पर मुश्तमिल हैं, जो खून और एहसासात दोनों को अक़ल से मिलाते हैं, और इंसानी जिस्म में ये एहसासात की आमदो रफ्त का सिलसिला चलता रहता है। आप में से कभी किसने इंसानी जिस्म पढ़ा अंदर से, न्यूरोलॉजिस्ट है कोई, किसी ने कभी नर्वस सिस्टम पढ़ा? आपको तक इधर एक हल्का सा कट लगता है ना, तो यहाँ से हमारी बाजू से ऊपर जाके दिमाग को वेन जाती है, और वहाँ से मैसेज आता है, और उसके जवाब में यहाँ के एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। ये जो पस होती है ना, ये लड़ाई का नतीजा होता है। एंटीबॉडीज़ जो पैदा होते हैं वो लड़ाई करते हैं उन जरासीम से, और वो उसके बदले में मर जाते हैं। कभी आपने, मैंने सोचा है मेरे आपके पास इतना वक्त और इतनी सोच कि हम इन सारे कामों को करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस मज़े से करें, और अगर हमें अपना जिस्म भी खुद चलाना पड़ता तो क्या बनता, ये सोचे आप और मैं खामोशी से ऑटोमेशन के सिस्टम पे चल रहे हैं। अगर हमें दिल को रोज़ सुबह उठ के पंप करना होता, जिगर को गर्म करना होता, तो हम कब के फौत हो चुके होते हैं। कभी ज़्यादा करते, कभी कम करते, कभी भूल जाते, कभी आँख ही ना खुलती और हमारा मैदा ही काम ना करता, और खाना खाने से पहले अगर मैदे की मशीनरी को स्टार्ट करना पड़ता तो बैठे होते सारे। कभी आप इन नेमतों पे सोचे हैं ना, ये मख्फी नेमतें, ये छुपी हुई नेमतें हैं, उस मालिक ने आपके मेरे लिए ये सारी नेमतें आम करके हमें आपको इस चीज़ का एहसास दिला दिया कि तुम मेरी मदद के बग़ैर एक लम्हा भी नहीं जी सकते। ज़िंदगी का एक दिन अल्लाह की ज़रूरत के बग़ैर इंसान गुजार नहीं पाता, लेकिन अफसोस की बात, उसी रब से दूर, उसी से कटे हुए, लोगों के करीब रब से दूर, लोगों से डरते रब से कोई नहीं डरते, दूसरों को खुश करते रब को खुश नहीं करते, ये एक इंसान की अपनी किस्मत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में दिलो दिमाग को कलेजे की ज़रूरत की तरफ इशारा किया है, और इन सब अज़ा के एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ की तरफ इशारा किया, और वो मोटी मोटी रगें जो दिल के धड़कने के साथ साथ सारे जिस्म के निज़ाम को दिल से जोड़े रखती हैं, और दूसरी किस्म की साकन रगें जो कलेजे को सारे बदन से इस अंदाज में जोड़ती हैं कि सारे जिस्म को हस्बे ज़रूरत ग़िज़ा मिलती हैं, यानी शरियाने और वरीदें। क्या ही हकीमाना तर्स के साथ तमाम अज़ा को जोड़ दिया, ख़ास तादाद में हड्डियों, पट्ठों, रगों, शरियानों, तांतों और जोड़ों, गूदों और रतूबतों का जिस्म में होना भी ज़ाती नेमत की कितनी बड़ी दलील है। इनमें से कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की, बल्कि एक जिस्म इंसानी में हज़ारों किस्म के पट्ठे, रगें और असाब होते हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े, कोई बारीक और मोटे, कुछ कम तकसीम शुदा हैं और कुछ ज़्यादा, और इनमें से हर एक में ज़ाती हिकमतें पोशीदा हैं। ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर सिर्फ़ इन मुतहरिक रगों में से कोई रुक जाए या साकिन रगों में से कोई हरकत शुरू कर दे तो ये मिस्कीन इंसान तो हलाक हो जाए। कभी सोचे ना तो हम कभी ना कहें कि हम बीमार हैं। हमारे जिस्म में इतनी मशीनें, इतने रकीक, इतने नरम आलात हैं, इसके बावजूद कितने सालों से हम चल रहे हैं। आप देखिए 50 साल किसी की अगर एवरेज एज लें आप, तो आप सोचिए 50 साल में तो घर पुराना हो जाता है, गाड़ी 50 साल पुरानी होगी तो फटीचर हुई होगी। इंसान 50 साल का इतना बूढ़ा नहीं होता, नॉर्मल होता है, कोई देख के उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा होता। तो इसका मतलब कि अल्लाह ने जो बनाया है वो बहुत बेहतरीन है। बस इन नेमतों पर गौर कीजिए ताकि तुम्हें इनके इकरार के बाद मोनम हकीकी, मोनम नेमत देने वाला, मोनम हकीकी की शुक्रगुजारी की तौफीक मिल जाए। ये तो ऐसी नेमतें हैं जो बिल्कुल आम भी हैं और हर जिस्म को मिलती हैं, जिनका गिनना और शुमार करना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम इन्हीं नेमतों को वक्त और उम्र के लिहाज से देखें तो हम इनमें अजीबोगरीब तगैयुरात महसूस करेंगे। यानी इंसान किन अदवार से गुजरता है, माँ के पेट में, फिर पैदाइश, फिर बचपन, फिर लड़कपन, जवानी, उधेड़ उम्री, बुढ़ापा, हर मरहले में इंसान पर ख़ास किस्म की नेमतें होती हैं जिनका शुमार वही रब्बे जुलजलाल ही कर सकता है। आप जो भी तरीका अपनाएं, चाहे रियाजियात और अदादो शुमार के माहरीन की तरह गिनना चाहें, आप इनके अदादो शुमार से कासिर ही रहेंगे। बस अल्लाह ही है जो ताकतवर है, ज़बरदस्त है और अज़मत वाला है। इब्ने अबद दुनिया कहते हैं, महमूद विराक ने मुझे ये अशार सुनाए। तर्जमा क्या अशार का? अगर मेरा शुक्र अदा करना भी अल्लाह की नेमत है तो गोया कि इसने मुझ पर एक और नेमत नाजिल कर दी हो, तो इस तरह एक बार फिर शुक्र अदा करना ज़रूरी हो जाता है। यदि शुक्र वही करता है जो अल्लाह की नेमतों में, नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कि आप शुक्र करें पिछली नेमतों का। मैं अक्सर सोचती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह के साथ दुआ की शुरू होती है, ये शुक्र करने से दुआ का आगाज़ क्यों है कुरान में? तो फिर उसका जवाब क्या मिला कि पिछली नेमतों का पहले शुक्रिया बोलो, फिर अगली और दूंगा। और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया उसने पिछली नेमतों का हक अदा कर दिया। अगर दिन बड़े और उम्र लंबी भी हो जाए तो इसके फजलो करम के बग़ैर फिर भी कामिल शुक्र अदा नहीं हो सकता। और जब खुशहाली मैसर आती है तो बहुत मज़ा आता है और सुकून मिलता है, और अगर कोई आजमाइश या तकलीफ़ पहुंचती है तो इस पर भी अजर व सवाब मिलता है। इन दोनों तरीक़ों का हसूल अल्लाह के एहसानात से ही मुमकिन है, ऐसे एहसानात जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और ना ही वो इस ज़मीन की खुशकी और पानी में समा सकते हैं। ऐसी गैर मखसूस नेमतें जिनकी तरफ ख्याल भी नहीं जाता। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नेमतें वही हैं जो हमें नज़र आती हैं, जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया, लेकिन हकीकत यह कि नेमतें ऐसी भी हैं जिनकी तरफ इंसान का ख्याल भी नहीं जाता। हाँ, अहले बसीरत हजरात इन नेमतों का इतराक रखते हैं। हम इनमें से बाज़ ऐसी नेमतों का ज़िक्र करेंगे ताकि लोगों को ये नेमतें भी याद आएँ और वो अल्लाह का शुक्र अदा करें जो मोनम हकीकी है। पहली चीज़ हमने भी क्या देखी, आपका मेरा अपना जिस्म। कभी एक्सरे मशीन से अंदर झांकिए, कभी अगर मौका मिल जाए किसी हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन के दौरान या कोई भी ऐसी डिसेक्शन हो रही है, अंदर से देखिए। यकीन करें इंसान अपनी जगह कायम नहीं रह सकता, टूट जाता है। इतना कमज़ोर इंसान अल्लाह ने इतनी चीज़ों से गुंदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अकड़ इतनी है कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती। तो अब कुछ मज़ीद नेमतों पे गौर करेंगे।